بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر، ستیہ وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتا سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں۔ تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोता, हमारे प्रसारण को आप शॉर्ट वेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है, आबान की 21, रबी अव्वल की 25 और नवंबर की 11 तारीख। हमारी समय की सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप समाचार सुनेंगे और उसके बाद दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा सुन सकेंगे और उसके बाद हम अपना दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल पेश करेंगे। तो श्रोताओ, ये तो थी कार्यक्रम की रूपरेखा और अब से कुछ ही देर में आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे। और अब पेश है समाचार। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि अमेरिका के वर्तमान राजनेता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अनभिज्ञ हैं। ईरानी विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा, पाकिस्तान ने कहा ईरान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे अपनी भूमि। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध विराम आज से लागू। और भारत के बिहार राज्य में एनडीए को बहुमत मिल गया। और अब आप विस्तार से समाचार सुने। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने इलाके में शांति स्थिरता, राष्ट्रों के अधिकारों के सम्मान, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, एक पक्षवाद के अंत, समझौतों की प्रतिबद्धता और सार्थक सहयोग को तेहरान की कभी न बदलने वाली नीतियां बताया है। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि अमरीका की जाने वाली वर्तमान सरकार ने अपनी सभी नीतियों में ईरान से दूरी अपनाई, जबकि ईरान की नीतियों का आधार सार्थक और वरिष्ठ नेता के शब्दों में पूरी दुनिया के साथ व्यापक सहयोग है और जिन लोगों ने यह दुश्मनी शुरू की है उन्हें खुद ही यह दुश्मनी खत्म करना होगी और जब भी वो ईरान के खिलाफ अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियां खत्म कर देंगे परिस्थितियां बदल जाएंगी। राष्ट्रपति रूहानी ने अमरीकी सरकार के बदलने के इस देश की जनता के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि अमरीका के वर्तमान राजनेता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अधिक जानकारी नहीं रखते और वो लगभग अमरीकी कट्टरपंथियों और जानवी शासन के आदेशों का ही पालन करते रहे हैं। राष्ट्रपति ने विदेश नीतियों में अमरीका की फजीहत का उल्लेख करते हुए कहा कि अमरीकियों की विदेश नीतियों में बहुत फजीहत हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीकी कोई प्रस्ताव पेश करे और उसके समर्थन में केवल अमरीका और एक छोटा सा द्वीप ही मतदान करे। राष्ट्रपति रूहानी ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि अमरीका के प्रति ईरान की नीतियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं बल दिया कि अमरीका की वर्तमान सरकार ईरानी व्यवस्था को गिराने का सपना देखती थी मगर अब लज्जाजनक रूप से खुद ही गिर गई। ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने परस्पर सहयोग में विस्तार पर बल दिया। विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने बुधवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से भेंट में दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया और कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ व्यापक संबंधों में विस्तार पर तैयार है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती मार्गों को बढ़ाने के फैसले का उल्लेख करते हुए बताया कि दोनों देशों ने नए सीमावर्ती बाजार खोलने पर भी सहमति प्रकट की है और इसी तरह ईरान और पाकिस्तान ने नए शैलियों में व्यापार करने पर तत्परता प्रकट की। इस भेंट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ईरान को पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण दोस्त और पड़ोसी बताया और ईरान के साथ सहयोग और व्यापार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के व्यवहारिक कदमों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर शांति और सुरक्षा की स्थापना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बल दिया कि पाकिस्तान अपने क्षेत्रों से ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा। ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसी प्रकार क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों, इस्लामी जगत के मुद्दों, इस्लामोबिया से मुकाबले, क्षेत्रीय सहयोग, विशेषकर इसी के मंच पर सहयोग में विस्तार, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, गैरकानूनी पलायन, ज्यारत के लिए की जाने वाली यात्राओं को सुविधाजनक बनाने और इसी प्रकार निकट भविष्य में संयुक्त आर्थिक आयोग के गठन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने पाकिस्तानी यात्रा के दूसरे दिन पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में इस देश के सेना प्रमुख से मुलाकात की। इरना की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने बुधवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात से पहले उनके साथ सेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश की और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीदों के मजार पर फूल चढ़ाए। विदेश मंत्री जवाद जरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस कार्यक्रम के बाद अपनी मुलाकात में आतंकवाद, सीमावर्ती सहयोग मजबूती और दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने इसी प्रकार क्षेत्र, विशेषकर अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। ईरान के उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार सैयद अब्बास इराकची ने अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कहा कि ईरान ट्रंप के बाकी रहने से भयभीत और जो बाइडेन की जीत से बहुत ज्यादा खुश नहीं। इरना की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार सैयद अब्बास इराकची का कहना है कि ट्रंप के बाकी रहने और जो बाइडेन के आने से ईरान की नीतियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनका कहना था कि ईरान अपने हितों के आधार पर फैसले करता है और बर्ताव करता है। इराकची ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव की घटनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले देश के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी एक दूसरे पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं और धांधली के दावे के साथ पूरे चुनाव को ही भ्रष्ट बता रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार सैयद अब्बास इराकची ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव ने अमरीका के झूठे लोकतंत्र और इस देश के ढांचे की पोल खोल दी। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने कोरोना संक्रमण के 11,000 से अधिक नए मामलों और गत 24 घंटों में 462 बीमारों की मौत की सूचना दी। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने बुधवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि गत 24 घंटों के दौरान 11,780 नए बीमारों की पहचान की गई, जिनमें से 3,339 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए जबकि बाकी को अब आरंभिक उपचार के बाद भेज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में कोविड 19 के कुल संक्रमितों की संख्या 7,15,068 तक पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 462 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद इस बीमारी से ईरान में मरने वालों की कुल संख्या 39,664 तक पहुंच गई है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य के बीच बुधवार से युद्ध विराम लागू हो गया है। सूचना के अनुसार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित सीमावर्ती क्षेत्र कराबाख में युद्ध विराम का समझौता हो गया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने घोषणा की है कि अजरबैजान रूस के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भी समझौते की पुष्टि कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कराबाख के पर्वतीय क्षेत्रों में शांति सेना तैनात की जाएगी जो कराबाख संकट के हल के लिए भूमि प्रशस्त करेगी। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहम अलियोव ने भी टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि युद्ध विराम के दृष्टिगत तुर्की और रूस संयुक्त रूप से कराबाख में स्थापित होने वाली शांति की रक्षा को अपने जिम्मे लेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम बुधवार सुबह 2 बजे से लागू हो गया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 27 सितंबर से घमासान युद्ध हो रहा था, जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान के साथ आर्मेनिया के संघर्ष विराम के समझौते से आर्मेनिया की जनता में काफी आक्रोश पाया जाता है और लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद भवन पर हमला कर दिया और संसद सभापति की जमकर पिटाई कर दी। दूसरी ओर अजरबैजान की जनता ने आर्मेनिया के कब्जे से कई क्षेत्रों की आजादी में इसराइली झंडा उठाकर खुशियां मनाई। बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों के लिए जो हुआ और जिसके परिणाम सामने आ गए और एनडीए को बहुमत हासिल हो गया। भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 125 और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। मंगलवार सुबह शुरू हुई वोटों की गिनती के बाद से रुझान ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन आखिरी समय में एनडीए ने बाजी मार ली। राज्य में कुल सीटों पर जीत और हार के बीच का फासला काफी कम रहा है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने के बाद अब अधिकारी अचानक ये कह रहे हैं कि आप हार गए। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कहा है कि नतीजा बदल रहा है। महाराजगंज, त्रिवेणीगंज, कटिहार समेत कई ऐसी जगहों पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है और टाल मटोल किया जा रहा है। आरजेडी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा है, वो नियम के अनुसार अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन सीटों पर जीत और हार का फासला काफी कम है वहां पर रिकाउंटिंग भी संभव है, लेकिन ये भी नियम के अनुसार होगा। भारत में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। महाराष्ट्र पुलिस ने गोस्वामी को एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई हुई। इसमें पत्रकार गोस्वामी की ओर से पेश हुए वकील हरीश सालवे ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दलील दी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने कहते हुए आत्महत्या कर ली कि सीएम उसे सैलरी देने में नाकाम रहे, तो क्या आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे? अर्णब को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सालवे ने मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ से कहा कि अर्णब को 3 साल पुरानी FIR के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिवाली के सप्ताह में उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके बाद गोस्वामी को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वैश्य अपराधी सजा काट रहे हैं। वकील ने दावा किया कि गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि राज्य में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मुंह खोलना है। पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के मामले में बिल्कुल कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। दवे ने इस चिट्ठी के जरिए अर्णब की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए अगले ही दिन लिस्ट करने पर सवाल उठाया है। भारत में कोरोना का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों में महामारी के 44,281 नए पॉजिटिव केस आए हैं। भारत के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के मामले 86 लाख के पार कर गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 512 मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा बढ़कर 1,27,571 हो गया। और इसी के साथ रेडियो देहरादून से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, 25 दिन के युद्ध के बाद अजरबैजान गणराज्य और आर्मेनिया के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिससे कराबाख को लेकर दोनों देशों के मध्य 30 वर्षों से चला आ रहा पुराना विवाद वैधित रूप से समाप्त हो गया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के कई शहरों व क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, जिन्हें वो 3 चरणों में वापस करने पर प्रतिबद्ध हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान को 1 सप्ताह का समय बीत चुका है, परंतु अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसे लेकर अमेरिका में विवाद जोर पकड़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बात के बहुत अधिक सबूत हैं कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है।
If you count the illegal votes,
श्रोताओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव परिणामों पर संदेह व्यक्त करते हुए बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जाएंगे, तब तक इसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका जताई जाती रहेगी। श्रोताओं, 25 दिन के युद्ध के बाद अजरबैजान गणराज्य और आर्मेनिया के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिससे कारावाग को लेकर दोनों देशों के मध्य 30 वर्षों से चला आ रहा पुराना विवाद विधित रूप से समाप्त हो गया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के कई नगरों व क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, जिन्हें वो 3 चरणों में वापस करने पर प्रतिबद्ध हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि आर्मेनिया ने अजरबैजान के कई शहरों व क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, फिर भी वो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट सुनते हैं।
शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कारावाग को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया गणराज्य के बीच 30 वर्षों से चला आ रहा पुराना विवाद आर्मेनिया अजरबैजान के शहरों को 3 चरणों में वापस करने पर प्रतिबद्ध हुआ है। इसी प्रकार शांति समझौते के अनुसार रूस के शांति सैनिक कारावाग के पर्वतीय क्षेत्रों और लाचिन के कैरिडोर में तैनात होंगे। इन सैनिकों की संख्या 1960 होगी और इन्हें कारावाग से आर्मेनियाई सैनिकों के निकलने के बाद 5 वर्षों के लिए तैनात किया जाएगा। समझौते के अनुसार युद्धबंदी कारावाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में वापस होंगे और लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे। मेरी जवानी कारावाग में बीती। कारावाग पर कब्जा होने के बाद मैं बंदी था और अब मैं आजाद हूँ। एक महिला कहती है कि मैं खुश हूँ कि मैं अपनी धरती पर वापस आई। इस समझौते के बाद समूचे अजरबैजान में खुशियाँ मनाई जा रही है। 25 दिन के युद्ध के बाद 28 साल के पश्चात अजरबैजान के अतिगृहित क्षेत्र आजाद हो गए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने अजरबैजान और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि कारावाग का युद्ध अब समाप्त हो चुका है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमारी सैनिक व गैर सैनिक संभावनाएं बहुत कम थीं। अगर युद्ध जारी रहता तो हमें और नुकसान उठाना पड़ता और पूरा क्षेत्र हाथ से निकल जाता। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के बंदी बनाए जाने के बाद इस देश के बहुत से नागरिकों ने संसद और संवेदनशील स्थानों पर हमला किया, संसद सभापति को मारा पीटा और संसद में तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये लोग समझौते को निरस्त करने और जंग को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने इन लोगों के कार्यों की भर्त्सना की और संयम से काम लेने और स्थिति को समझने का आह्वान किया। इस समय मैं आर्मेनियाई संसद के पास हूँ और येरवान की स्थिति अशांत है। इस आधार पर आर्मेनिया के राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक नेता देश के लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि शांति और एकता बनाए रखें और देश की स्थिति को जटिल न बनाएं। जॉर्ज इब्राहिमी, IRIB न्यूज, येरवान।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान को एक सप्ताह का समय बीत चुका है, परंतु अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसे लेकर अमेरिका में विवाद जोर पकड़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बात के सबूत बहुत अधिक हैं कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और घपली हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके प्रतिस्पर्धी की ओर से बहुत से मतों को चुरा लिया गया है। साथ ही कायम रिजवी।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान को एक सप्ताह का समय बीत चुका है, परंतु अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसे लेकर अमेरिका में विवाद जोर पकड़ता जा रहा है। 3 नवंबर को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के लिए मतदान में ट्रंप को हार मिली थी, परंतु परंपरा के खिलाफ उन्होंने अमेरिका की फेडरल एजेंसियों को यह आदेश दे रखा है कि वे सत्ता हस्तांतरित करने वाली टीम से सहयोग न करें। इसी बीच राष्ट्रपति पद के विजेता जो बाइडेन ने अपना कार्यालय खोलकर उसे सक्रिय कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने विश्व के दूसरे नेताओं से संपर्क भी साधा है। इस समय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जो बाइडेन को 270 से अधिक इलेक्टोरल वोट मिले हैं, इस आधार पर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। इस प्रकार वे 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। उनके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और उनके प्रतिस्पर्धी की ओर से बहुत से मतों की चोरी कर ली गई है। इस प्रकार वे भी 20 जनवरी के बाद व्हाइट हाउस में बाकी रहना चाहते हैं।
They can try to steal the election from us.
अब राष्ट्रपति के निर्धारण का मामला अमरीकी अदालत के पास है। ट्रंप का दावा है कि इस बात के बहुत अधिक सबूत हैं कि चुनावों में भारी पैमाने पर धांधली हुई है जिससे चुनाव परिणामों को बदला जा सकता है, किंतु जो बाइडेन ने इस प्रकार के दावे को आधारहीन बताया है। वे वर्तमान चुनाव नतीजों को बाकी रखने पर आग्रह कर रहे हैं, जबकि अभी बहुत से राज्यों की मतगणना पूरी नहीं हुई है। ट्रंप को आशा है कि अमेरिका की उच्च अदालत के न्यायाधीश उनके ही हित में फैसला दे सकते हैं, जिससे चुनाव परिणाम पूरी तरह बदल जाएंगे, जबकि जो बाइडेन चुनाव परिणामों और अपनी बढ़त को आधार बनाते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि अदालत के फैसले के बाद भी चुनाव परिणाम यही रहेंगे। अलबत्ता ट्रंप का सोचना है कि वे अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी उनके हित में ही फैसला दे सकते हैं। बहरहाल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाला मतदान खत्म हो चुका है और चुनाव परिणाम भी सामने आ चुके हैं, परंतु अमेरिकी समाज की स्थिति यथावत विस्फोटक बनी हुई है।
श्रोताओ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव परिणामों पर संदेह व्यक्त करते हुए बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जाएंगे, तब तक इसी प्रकार की गड़बड़ी व आशंका जताई जाती रहेगी। इसी प्रकार ये विशेषज्ञ सवाल उठाते और कहते हैं कि क्या तकनीक के प्रयोग में भारत अमेरिका से आगे हो गया है, जबकि अमेरिका में ईवीएम का प्रयोग मना और गैर कानूनी है।
बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के बाद देर रात चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विजयी होने की घोषणा कर दी, जिसे सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिल गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार विधानसभा की 243 सीटों में 125 सीटें मिल गई हैं। भाजपा को 74 सीटें मिली हैं, जबकि पिछली सरकार में भाजपा के बड़े सहयोगी दल जनता दल यू 43 सीटों पर सिमट गई है। महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं और इसका सबसे बड़ा सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है, जिसे 75 सीटें मिली हैं। यद्यपि इस चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका खो बैठे हैं और भाजपा को जनता दल यू से अधिक सीटें मिली हैं, ऐसे में इस बात की संभावना हो सकती है कि बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा का हो। लेकिन भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ये हमारा वादा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बराबर के सहयोगी हैं।
जब आप अपने सोचते कि आप जीत रहे हैं तो सब कुछ जीतता।
जेडीयू ने कहा कि दिवाली के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। टीकाकारों का कहना है कि भाजपा ने कभी भी अकेले बिहार में शासन नहीं किया है और वह नीतीश कुमार के बिना इस राज्य में सत्ता में नहीं आ सकती थी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल, पर उससे पहले आप सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली गुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कड़ी में फाओ द्वीप को फतह करने के लिए वलफज्र 8 सैन्य ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, जो पवित्र प्रतिरक्षा का सबसे जटिल व सफल सैन्य ऑपरेशन था।
जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक के बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं। बद्र सैन्य ऑपरेशन के एक साल बाद वलफज्र सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन की योजना बनाने में खैबर और बद्र सैन्य ऑपरेशन के अनुभवों से फ़ायदा उठाया गया, ताकि उफनती हुई अरवंद नदी को पार करने की सफल योजना बन सके। जैसा कि खैबर और बद्र ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जंग का मैदान बदला गया और इसे हुरुल हुवैज़ा के जल क्षेत्र में अंजाम दिया गया, जिससे पहल करने की क्षमता ईरानी फोर्सेस के हाथ में आ गई। जंग के मैदान में इस बदलाव के बाद इराक की बासी सेना को नए हालात का सामना हुआ, जो जंग के पिछले अनुभव और क्लासिकल विचार से अलग था। सद्दाम के बासी शासन को इराक के सैन्य संगठन को जंग के मैदान में बदले हुए हालात में ढालने में लंबा वक्त लगा। इस बीच ईरानी फोर्सेस को खैबर और बद्र ऑपरेशन के अनुभव से फ़ायदा उठाकर दूसरे बड़े ऑपरेशन की योजना बनाने का मौका मिल गया। इस बीच जंग के मोर्चे को मुख्य रूप से हुरुल हुवैज़ा में सक्रिय रखने के लिए सीमित स्तर पर कुछ छोटे ऑपरेशन जारी रहे।
इराकी बासी सेना ने जिस वक्त ईरान वलफज्र 8 ऑपरेशन की योजना बनाई, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए मोर्चों की रक्षा की रणनीति अपना रखी थी। इस लक्ष्य के लिए इराकी सेना ने जंग के मोर्चों की ज़मीनों में नाना प्रकार की रुकावटें खड़ी करने के लिए बारूदी सुरंग बिछाने और बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग से जुड़ी गतिविधियाँ अंजाम दीं। कभी कभी ये ईरानी फोर्सेज के ठिकानों पर सीमित स्तर पर गोलाबारी भी करती थी। इराकी बासी सेना 1984 से संपूर्ण रक्षा की नीति को मोबाइल डिफेंस की नीति अपनाने की कोशिश में थी और इस काम के लिए योजना بنا رہی تھی۔ 1985 کے ٹھنڈک کے موسم میں ایران ایک ایسے نرنائک آپریشن کی کوشش میں تھا جس سے عراق کے باسی شاسن کو ایسا نقصان پہنچا کہ ایران اپنے مد نظر لکش حاصل کرنے کے ساتھ جنگ کو ختم کرے۔ تتکالین سنسد سبھاپتی و جنگ کے معاملوں کے پربھاری آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے والفجر ایٹ آپریشن سے پہلے کمانڈروں کے بیچ کہا کہ آپ ارون ندی کو پار کر اس اور جائیے اور فاو علاقے پر نینترن کیجیے، ہم جنگ کو ختم کروا دیں گے۔
فاو علاقہ پرائدویب جیسا علاقہ ہے جو ارون ندی، فارس کی کھاڑی اور خور عبداللہ سے گھرا ہوا ہے۔ اس علاقے کے اتر میں ارون ندی اور آبادان دویپ ہے۔ اس کے 90 کلومیٹر پشچموتر میں اودیوگک شہر بسرا ہے۔ اسی طرح اس کے دکشن میں خور عبداللہ اور دکشن پورو میں فارس کی کھاڑی اور دکشن پشچم میں ام القصر بندرگاہ ہے۔
فاو علاقہ پانی سے گھرا ہوا ہے، اس لیے اس پر فارس کی کھاڑی کے جوار بھٹے کا اثر ہوتا ہے۔ جوار بھٹے کی وجہ سے وہاں ہمیشہ آردتا رہتی ہے۔ علاقے کی زمین کا ایک بھاگ دلدلی ہے، یہی وجہ ہے کہ ندی سے فاو بسرا راج مارگ تک کی زمین کے علاوہ باقی زمین ریتیلی اور کھاری ہے۔ تھوڑی سی بارش میں اس پر کوئی بھی بھاری واہن اور کار نہیں گزر سکتی۔ ارون ندی میں پانی کا سروت عراق کی دو ندیاں دجلہ اور فرات ہیں، جبکہ ایران سے نکلی کارون ندی کا پانی بھی اس میں گرتا ہے۔ اس ندی کا بہاؤ اتر سے دکشن کی اور ہے، جو فارس کی کھاڑی میں گرتا ہے۔ ارون ندی کے پانی پر سمندر کا اثر ہے، اس میں 24 گھنٹے میں 4 بار جوار بھاٹا آتا ہے۔ جب جوار ہوتا ہے تو پانی فارس کی کھاڑی کی طرف جاتا ہے، اور جب بھاٹا آتا ہے تو پانی ندی کی اور بڑھتا ہے۔ اس پرکار پانی کی سطح بڑھتی جاتی ہے۔ ندی کے سب سے گہرے بھاگ میں پانی کی اونچائی 25 میٹر تک پہنچتی ہے۔
فاو شہر، اس کی جیٹیوں اور اس علاقے کے اودیوگک و پیٹرو کیمیکل پرتشٹھانوں کو چونکہ جنگ کے دوران ایران کے ہوائی حملوں اور توپ خانہ اکائیوں کے نشانے پر تھے، نقصان پہنچا۔ فاو کے جس علاقے میں آپریشن ہونا تھا اس کی بھوگولک استھتی کی وجہ سے آئی آر جی سی کے کمانڈروں کے سامنے وشیش حالات پیدا ہو گئے تھے، اس ارتھ میں کہ ایک اور سارتھک تتو جنگ میں جیت اور نئے لچیلے بندو کے پیدا ہونے کی خبر دے رہے تھے، تو دوسری اور ایسی پربھاوی رکاوٹیں سامنے آ رہی تھیں جو کام روکنے میں نوارک تتو کا رول ادا کرتی اور سینیہ آپریشن کو ناکام بنا سکتی تھیں۔ اصل میں یہ حصہ آپریشن کے جٹل ہونے کا کارن بنا، جس کی وجہ سے وشیش ٹیکٹک اپنانا ضروری لگتا تھا۔
آپریشن کے انیک ٹیکٹک اور جنگ لڑنے کی وبھن شیلیوں میں خشکی پانی کا آپریشن، خاص طور پر ندی پار کرنا، بہت جٹل سینیہ کارروائی ہوتی ہے، وہ بھی ارون ندی جس میں دن رات دونوں وقت جوار بھٹا آتا ہو اور ندی کی چوڑائی 500 میٹر سے 2000 میٹر تک بدل جائے۔ پانی کے تیز بہاؤ کے وقت کنارے اور بیچ میں پانی کی سطح الگ ہوتی ہے، جسے پار کرنے کے لیے بہت سٹیک حساب کرنے، تھل سینکوں کو پار کرانے کے لیے اچت ٹیکٹک اپنانے، بھاری سادنوں کو پار کرانے کی یوجنا بنانے، آواجائی کے لیے تٹ بنانے اور اچت پل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپریشن کی سنویدنشیلتا کے مد نظر کام میں سوکشمتا و سرکشا ماندنڈ کا پالن کرنے کے ساتھ ساتھ تیزی بھی دکھانی ہوتی ہے۔ آپریشن کی جٹلتا کے مد نظر وشیش سنسادھنوں کی ویوستھا ضروری تھی، جو مکھیہ روپ سے ایسی ڈیزائن پر نربھر ہو جس میں انوویشن ہو۔ مثال کے طور پر ارون ندی پر پل بنانا آپریشن کی اہم مشکلوں میں شامل تھا۔ خیبر آپریشن کے انوبھو اور موجودہ سنسادھنوں کے استعمال سے دیش کے بھیتر پل کے پارٹس تیار ہوئے۔
8 سال کی جنگ کے دوران ایران کے سینیہ آپریشنوں کی ایک وشیشتا دشمن کو کارواہی کی بھنک نہ لگنے دینے کا اصول تھا۔ اس اصول کو ویوہارک بنانے کے لیے اصل آپریشن کی یوجنا کو چھپانے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دینے والے آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کے مد نظر کہ عراق کی باسی سینا ایران کی اسلامی کرانتی کے دشمن سنگٹھن ایم کے او کے تتووں سے جاسوسی کرواتا تھا، دشمن کو یوجنا کی بھنک نہ لگنے دینے کے اصول پر عمل کے لیے انیک رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری تھا۔ اس لکش کے لیے باسی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے فورسز کی آواجاہی کے سمبندھ میں اپائے اپنائے گئے۔ جس علاقے میں ولفجر 8 سین آپریشن انجام دیا گیا اس کے قریب دشمن کی حرکتوں سے لگتا تھا کہ اسے اس آپریشن کی ذرا بھی بھنک نہیں تھی۔ عراق کی 16ویں ڈویژن کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ اروند ندی کے ایک علاقے میں موجود توپ خانہ اکائی کے ایک بھاگ کو پوروی دجلہ کے علاقے میں تعینات کیا جائے۔
ولفجر 8 آپریشن کو سفل بنانے کے لیے آئی آر جی سی کے سبھی سنسادھن اور دسیوں ہزار سیون سویوں نے بھاگ لیا۔ اس آپریشن میں آئی آر جی سی اور سینا کی سبھی توپ خانہ اکائیوں، ہاک اور ریپیئر میزائل سینا کی 8 ڈویژن، وایو سینا کے ویمان اور ہیلی کاپٹر شامل تھے۔ کسی بھی آپریشن میں اس حد تک سنسادھن اور فورسز کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ آئی آر جی سی اور سینا کی کمان خط الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ہاتھ میں تھی۔ حملہور باسی سینا کو دیش سے کھدیڑنے اور اس پر جنگ کو ختم کرانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے بہت سے آپریشن کیے گئے۔ ان میں سے کچھ لڑائی باسی فورسز کو کھدیڑنے کے لیے دشمن کی بھومی پر لڑی گئی۔ انہی اہم لڑائیوں و سینی آپریشنوں میں عراق کی بھومی میں فاو پرائدویپ پر ایرانی فورسز کی کارروائی بھی ہے، جس میں بہت ہی سٹیک ٹیکٹک اپنائی گئی اور یہ آپریشن راجنیتک اور سینیا آیام سے بہت ہی نرنائک ثابت ہوا۔ اس طرح کے آپریشن سہیت عراق کی بھومی میں انجام دیے گئے دوسرے آپریشن کا لکش عراق کو فتح کرنا نہیں بلکہ اسے دیش کے تاناشاہ صدام کو ایسے بندو تک پہنچانا تھا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے پیچھے ہٹ جائے اور بھوشیہ میں اس طرح کے حملے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ دوستو، کارکرم کا سمے سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ آج کل
دوستو، کارکرم آج کل کی ایک انہیں کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور غیم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کارکرم میں پشچم دوارا سنیوجت ڈھنگ سے کروڑوں مسلمانوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچانے کے وشے پر چرچا کریں گے۔
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرانسیسی یوواؤں کو
संबोधित करते हुए उनसे पूछा है कि क्यों पश्चिम में होलोकॉस्ट के बारे में सवाल करना अपराध है। अगर कोई होलोकॉस्ट के बारे में कुछ लिखे तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती है, जबकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी महान हस्ती का अनादर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की श्रेणी में पहुंच जाता है।
पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली हेब्दो की ओर से अपमानजनक कार्टून प्रकाशित किए जाने से पूरे विश्व के मुसलमान आहत हैं। ये काम करके इस पत्रिका ने लगभग 2 अरब मुसलमानों के दिलों को दुखाया है। इस संबंध में मुसलमानों की ओर से विरोध उस समय अधिक बढ़ गया जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रां सहित वहां के राजनेताओं ने इस घृणित कार्य का परोक्ष और अपरोक्ष रूप में समर्थन किया। दुनिया के बहुत से मुसलमान देशों ने फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार किया।
دستهایی وجود داره. دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که ناگهان می‌بینیم در دفاع از این کار معمولی هنری یک رئیس جمهور مثلا فرض کنید یک دولت می‌ایسته، بعضی دولت‌های دیگه هم از او حمایت می‌کنن. این پیداست که تشکیلاتی پشت سر این قضیه است. صرف این نیست که هنر فرانسه سقوط کرده به اینجا رسیده کارش. مسئله سیاست دولتی است که از این کار غلط داره حمایت میکنه.
حالانکه پشچیمی سرکاروں نے سنچار مادھیموں کے ذریعے اسلامو فوبیا کو لمبے سمے سے اپنی کاری سوچی میں شامل کر رکھا ہے، اس کا مکھیہ کارن یہ ہے کہ ان کو بھلی بھانتی پتا ہے کہ اسلام جیسا پرگتی شیل دھرم اپنے ترکوں سے مانو جاتی کو اپنی اور آکرش کرنے کی پوری شمتا رکھتا ہے۔ वर्तमान समय में पश्चिम में इस्लाम की ओर झुकाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ के लोग भौतिकतावादी जीवन से ऊब चुके हैं। इन्हीं बातों के दृष्टिगत पश्चिम के राजनेता उन संचार माध्यमों का समर्थन कर रहे हैं जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं में से एक फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली हेब्दो भी है।
दोस्तों, जब से मुसलमानों ने पैगंबर इस्लाम के अनादर पर आक्रोश प्रकट करते हुए इसका विरोध आरंभ किया है, कुछ इस्लामी देशों की सरकारों और अधिकारियों ने भी इसकी निंदा करते हुए फ्रांसीसी अधिकारियों से मांग की है कि वे इस प्रकार के कार्टून के प्रकाशन पर तत्काल रोक लगाए। हालांकि इस प्रकार के अवसरों पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं जिनका व्यवहारिक रूप में कोई विशेष असर नहीं होता। पश्चिम को ज्ञात है कि इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं कूटनीतिक स्तर की होती हैं, जिनकी अपनी एक सीमा है, उसे आगे नहीं बढ़ सकती। इसी मुद्दे के दृष्टिगत इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने अपने संबोधन में पश्चिमी राजनेताओं को दृष्टिगत नहीं रखा, क्योंकि उनको पता है कि इस घृणित काम के पीछे उन्हीं का हाथ है।
کاریکاتورها رو میارید اینجور نصب میکنید، در یه جای نمایانی صریحا از اونها حمایت میکنید. این خیلی حادثه تلخ و زشتی است که در ابعاد یک دولت داره اتفاق میفته. اون برهه قبل هم که این قضیه پیش آمد همین اتفاق افتاد. اونجا هم دیدیم که عناصر دولتی و شخصیت های سیاسی از پشت قضیه در آمدن و دفاع کردن و حمایت کردن.
वरिष्ठ नेता ने इसीलिए पश्चिमी जनता विशेषकर वहां के युवाओं को संबोधित करते हुए एक संदेश दिया है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने इससे पहले भी जब दाइश ने फ्रांस में आतंकी कार्रवाइयां की थीं, फ्रांसीसी युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें पत्र लिखा था। पहला पत्र सन 2015 में भेजा गया था। इस पत्र में वरिष्ठ नेता ने लिखा था कि मैं आप युवाओं को संबोधित कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके माता पिता को अनदेखा कर रहा हूं, बल्कि ये इसलिए है कि देश और राष्ट्र के भविष्य को आपके हाथों में पाता हूं। मैं अपने पत्र में आपके राजनेताओं को संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि उन्होंने जानबूझकर राजनीति के मार्ग को सच्चाई के रास्ते से موڑ دیا ہے۔
खेद की बात है कि पश्चिम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में इस्लामी आस्था को चोट पहुंचाता रहता है। शार्ली हेब्दो की ओर से पैगंबर इस्लाम का अपमानजनक चित्र छापना और उसको बारंबार प्रकाशित करना बताता है कि ये किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जिसको सरकारी समर्थन प्राप्त है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में हम कार्टून का समर्थन करते हैं। हालांकि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने अपने पत्र में दो सवाल पूछकर पश्चिम के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी है।
آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے فرانسیسی یوواؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ اپنے راشٹرپتی سے پوچھیے کہ وہ کیوں پیغمبر اسلام کے انادر کا سمرتھن کرتے ہوئے اس کو ابھیویکتی کی سوتنترتا کا نام دے رہے ہیں۔ کسی پوتر ہستی کا اپمان کہاں سے ابھیویکتی کی سوتنترتا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مورکھتا پورن کام نہیں ہے؟ کیا یہ اس راشٹر کا انادر نہیں ہے جس نے ان جیسے ویکتی کو اپنا راشٹرپتی چنا ہے؟ इस प्रकार से वरिष्ठ नेता ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनादर की सीमाओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रदर्शन ने सिद्ध कर दिया कि पूरे विश्व में इस्लामी राष्ट्र जागरूक है।
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردند و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن.
स्वतंत्रता मानवता का वो महान और पवित्र मुद्दा है जिसको हासिल करने के लिए राष्ट्रों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। न जाने कितने लोगों ने इसकी प्राप्ति के मार्ग में अपनी जाने तक दे दी। इस्लामी शिक्षाओं में भी मनुष्य के स्वतंत्रता के अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। इसे ईश्वर की ओर से दिया गया उपहार माना गया है। प्राणियों में भी मनुष्य ही वो प्राणी है जिसको अपने लिए अपने हिसाब से जीवन गुजारने का अधिकार हासिल है। हालांकि यहाँ पर अगर वो सही या गलत चयन करता है तो इसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी।
मध्ययुगीन काल में यूरोप में गिरजाघर के वर्चस्व की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता की ओर विशेष ध्यान दिया गया। यूरोप में ये आज़ादी अब इस सीमा तक पहुँच गई है कि उसने अपनी सारी हदें पार कर ली हैं। इस तथा कथित आज़ादी से अब वहाँ के लोग भी ऊब चुके हैं। पश्चिम में प्रचलित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दोष ये है कि उसमें मानवीय आयाम को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। वरिष्ठ नेता अपने पत्र में इस तथा कथित स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पवित्र हस्तियों के अनादर को मूर्खतापूर्ण काम बताते हैं।
एक अन्य घटना से ये पता चलता है कि फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दोहरे मानदंड निर्धारित हैं। इसका उदाहरण हुलोकास का मामला है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने इसी बारे में फ्रांसीसी युवाओं से एक सवाल किया है। वे पूछते हैं कि फ्रांस में हुलोकास के बारे में शंका करना क्यों पाप है? अगर इस बारे में कोई कुछ लिख दे तो उससे जेल हो जाती है, जबकि पैगंबर इस्लाम का अनादर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया जाता है।
दोस्तों, ज़ायोनी इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने 6 मिलियन अर्थात 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इस प्रकार से स्वयं को अत्याचारग्रस्त दर्शाकर उन्होंने विश्व समुदाय की सहानुभूति अर्जित करते हुए अवैध ज़ायोनी शासन की स्थापना कर डाली। अब ज़ायोनी शासन होलोकास्ट की घटना के बारे में किसी भी प्रकार की खोजबीन या जाँच पड़ताल का कड़ा विरोध करता है। فرانس سہیت پشچم کے کئی دیش ابھیویکتی کی سوتنترتا کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس مدے پر کسی کو زبان کھولنے کی انومتی نہیں دیتے۔ اگر کوئی اس بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو اپرادھ بتا دیا جاتا ہے۔
ادھرن سوروپ فرانسیسی ناگرک پروفیسر روجر گیروڈی کو سن 1998 میں اس لیے سزا اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے اس بارے میں اپنی کتاب میں سوال اٹھایا تھا کہ اتنی بڑی سنکھیا میں ارتھات 60 لاکھ یہودیوں کو کیسے اتنے کم سمے میں مارا جا سکتا ہے۔ اس کے لگ بھگ 8 ورشوں کے بعد ایک فرانسیسی اتہاسکار رابرٹ فاوریسن کو بھی اسی پرکار کی پرستھتی کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے بھی ہولوکاسٹ کی سچائی پر سوال اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں جو کہانی دنیا کے سامنے رکھی گئی ہیں اس کے بھیتر بہت ادھک ورودابھاس پائے جاتے ہیں۔
اس پرکار سے اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے یہ دو سوال اٹھا کر پشچم وشیش کر وہاں کے یوواؤں کے لیے یہ اسپشٹ کر دیا ہے کہ ان کے نیتا اپنے ادیشوں کی پورتی کے لیے آزادی کا نعرہ دیتے ہیں جبکہ اس پر ان کو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو شارلی ہیبدو نامک پترکا کی اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ لگ بھگ 2 کروڑ مسلمانوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو۔ حالانکہ اگر اس کے وپریت ہوتا ارتھات یہ پترکا ہولوکاسٹ کے بارے میں ایسا کچھ لکھتی تو زائونیوں کو پسند نہیں آتا اور شارلی ہیبدو کا استتو ہی باقی نہیں رہ پاتا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے اور شروتاؤں سبھا کے انت میں آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ورتمان راجنیتا انتراشٹریہ راجنیتی سے انبھگ ہیں۔ ایرانی ودیش منتری کی پاکستان یاترا، پاکستان نے کہا ایران کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے اپنی بھومی۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں یدھ ورام آج سے لاگو ہو گیا اور بھارت میں بہار راج میں NDA کو بہمت مل گیا۔ تو شوتا ہمیں آشا ہے کہ ہماری اس سمے کی سبھا بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے وچاروں کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔ Thank you.